हमारा बच्चा सोकर इतनी जल्दी उठ गया। आरवी ने प्यार से उसके चेहरे पर अटखेलियां करते बालों को अपनी हथेलियों से संवारते हुए उससे सवाल किया। अंशु ने तुरंत ही हामी भरते हुए मासूमियत से कहा, यस, अंशु सोकर उठ गई और मम्मा को ढूंढ रही थी, पर मम्मा ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अंशु ने नाराजगी से मुंह फुला लिया। अब तो वो और ज्यादा क्यूट लगने लगी। आरवी के लबों पर मुस्कान उभर आई। उसने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मम्मा ने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया। देखिए मम्मा आपके पास आ गई। अब अंशु बेबी ही आज जल्दी उठ गई, तो इसमें मम्मा की क्या गलती? आरवी मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। अंशु कुछ पल मुंह फुलाए उसको नाराजगी से देखती रही, फिर उसके सीने से लगते हुए बोली, आई मिस्ड यू मम्मा, आई मिस्ड यू टू बेटा। आरवी ने प्यार से उसके सर को चूम लिया, फिर उसको अपनी गोद में उठाकर खड़ी हो गई। अंशु ने अब प्यारी सी शक्ल बनाकर कहा, मम्मा बेबी गुड गर्ल बन गई है। बेबी ने बड़ी दादी और छाया दीदी को परेशान भी नहीं किया और उनकी बात भी सुनी। अंशु ऐसे कह रही थी जैसे जाने कितना ही बड़ा काम किया हो उसने, पर थी तो बच्ची ही, इसलिए उसकी एक्साइटमेंट ठीक ही थी। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर और प्यारा सा चेहरा देखकर आरवी ने मुस्कुराकर कहा, हमारा बच्चा गुड गर्ल बन गया है, अब आपको रोज ऐसे ही गुड गर्ल बनकर रहना है। यस मम्मा, अब बेबी गुड गर्ल बन गई है, पर आप गुड गर्ल के डैडी को नहीं लेकर आए। अंशु ने आरवी के पीछे देखते हुए मुंह फुलाकर कहा, क्योंकि शान उसको कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी शिकायत सुनकर आरवी के चेहरे पर उदासी के भाव उभर आए, जिसे छुपाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, अंशु के डैडी अभी ऑफिस गए हैं, पर वो भी जल्दी से अंशु के पास आ जाएंगे और तब तक अंशु और मम्मा साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अंशु उसकी बात सुनकर खुश हो गई। आरवी उसे लेकर कुछ और आगे बढ़ी तो हॉल में बैठे सुभाष जी ने उसे देखते हुए पूछा, बेटा कैसा रहा आपका पहला दिन? उनके सवाल पर आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा था डैड, और आज तो मैंने बस बैठकर बाकियों की रिहर्सल ही देखी है, अभी मेरे सीन शुरू नहीं हुए। चलिए अच्छा है, दूसरों को देखेंगी तो आसानी होगी आपको। जी डैड, आरवी ने सहमति में सर हिला दिया। अब अर्पिता जी ने उसे देखकर कहा, बेटा आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए चाय भिजवाते हुए। उनकी बात सुनकर आरवी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, चाय भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रेश होकर यहीं आ जाऊंगा, साथ में चाय पियेंगे। अर्पिता जी ने उसकी बात पर मुस्कुराकर हामी भर दी तो आरवी अंशु को लेकर रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो खुद फ्रेश होकर और अंशु का हाथ मुंह धुलवाकर वापस नीचे चली आई। सबके साथ चाय पीते हुए उसने अंशु को होमवर्क करवाया, फिर सुभाष जी के पैरों की मालिश करने लगी। हालांकि उन्होंने मना किया, पर आरवी ने उनकी बात नहीं सुनी और मालिश करने बैठ गई। अंशु वहीं उसके पास बैठी खेल रही थी और उससे बातें भी कर रही थी। कुछ देर बाद शान भी घर आ गया और कोई तो उससे बात कर नहीं रहा था, पर अंशु तो उसे देखकर बड़ी खुश हो गई थी और शान भी एक नज़र सबको देखने के बाद उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। आरवी इसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए उठ ही रही थी कि अर्पिता जी ने उसको रोक दिया और छाया को कॉफ़ी ले जाने कह दिया। आरवी चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी, पर अब वो डर रही थी कि कहीं शान छाया पर गुस्सा न करने लगे। छाया खुद भी आजकल शान से दूर ही रहती थी। जब से आरवी के साथ पार्टी में किए उस सलूक का उसे पता चला था, तभी से मन में नाराजगी भर गई थी, पर औरों की तरफ उसे शिकायत करने का हक नहीं था, इसलिए उसकी नाराजगी खामोश थी। बड़ी माँ के कहने पर वो शान को कॉफी देने चली तो गई, पर सारे वक्त मन उलझा रहा। रूम के गेट पर जाकर वो खड़ी हो गई और कुछ देर ठहरने के बाद गेट नॉक करते हुए बोली, भैया आपकी कॉफी। शान को इंतजार था आरवी का, पर जब छाया की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं, पर अगले ही पल उसने बिना किसी भाव के कहा, अंदर आ जाओ। छाया ने दरवाजा खोला और शान की तरफ बढ़ गई। शान अपना ब्लेजर उतारकर और टाई की नोट ढीली करके सोफे पर बैठा अपनी अंशु के साथ बात कर रहा था। छाया ने निगाहें उठाकर उसको देखा तक नहीं, बस ट्रे सामने टेबल पर रखी और पीछे हट गई। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसके कानों में शान की सख्त आवाज पड़ी, आरवी कहाँ है? शान का सवाल सुनकर छाया के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर सर झुकाते हुए कहा, बड़ी माँ और अंकल के साथ बैठी है। इसके आगे शान सब समझ गया। उसने हुंकार भरते हुए कहा, तुम जाओ और उसे कहो कि रूम में आए, काम है मुझे। छाया ने हामी भरी और वहां से चली गई। शान फिर से अंशु के साथ खेलने लगा और उसकी निगाहों को इंतजार था आरवी का, लेकिन काफी देर बाद भी जब आरवी नहीं आई तो उसने खुद ही अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। उसके बाद उसे आरवी के साथ वक्त ही नहीं मिला, डिनर भी खामोशी से हुआ। उसके बाद शान अपने रूम में आ गया, जबकि आरवी पहले सुभाष जी को दवाइयां देकर आई, फिर वो अंशु के साथ उसके रूम में चली गई। उसे सुलाते सुलाते वो कल रात की शान की बातों के बारे में सोचने लगी और इस बार उसकी परेशानी की वजह ये थी कि शान ने उसे उसके रूम में सोने के लिए बुलाया था और अंशु को साथ लाने से मना कर दिया था,
तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब शान क्या करने वाला है। उसे वहां बैठे बैठे एक घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, पर वो तो अपनी ही सोच में गुम थी, इसलिए उसको वक्त का एहसास नहीं हुआ। जब छाया रूम में आई तब जाकर आरवी की तंद्रा टूटी। छाया ने उसे परेशान निगाहों से देखते हुए कहा, भाभी आप सच में भैया के साथ सोएंगी? आजकल उनका बर्ताव आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहीं सो जाइए ना। छाया को यूं फिक्र करते देख आरवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, बस तुम अंशु का ध्यान रखना। छाया ने मायूसी से हामी भर दी तो आरवी ने अंशु के माथे को चूम लिया और रूम से बाहर निकल गई। शान के रूम तक तो वो पहुंच गई, पर अब अंदर जाने में उसे घबराहट हो रही थी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए हिम्मत करके गेट खोल दिया और अभी पहला कदम अंदर रखा ही था कि शान की सख्त आवाज उसके कानों में गूंज उठी, कहाँ थी अब तक तुम? आरवी ने चौंकते हुए आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई तो बेड पर पैर पसारे बैठा शान उसे ही गुस्से से घूरे जा रहा था। उसका गुस्सा देखकर आरवी का गला सूखने लगा। उसने थूक निगलते हुए अपना गला तर किया, फिर दरवाजा बंद करके अंदर आते हुए बोली, अंशु के पास थी, उसे सुला रही थी। सुलाने में इतनी देर लगती है? शान अब भौंसे कोड़े उसको घूरने लगा। आरवी ने अब उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है और मैं कहीं भी थी इससे आपको क्या मतलब है? आपने मुझे यहाँ सोने के लिए कहा था तो आ गई ना मैं, अब जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर लीजिए, क्यों बेवजह सवाल जवाब करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आरवी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे और वो अब शान के सामने खड़ी थी। उसकी बात सुनकर शान के चेहरे पर असमंजस भरे भाव उभर आए। उसने कंफ्यूज निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब है इस बात का? क्या करना चाहता हूँ मैं जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, जरा मुझे भी बताओ। आरवी ने एक बार फिर बिना किसी भाव के कहा, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि क्यों मुझे यहाँ अकेले सोने के लिए बुलाया है आपने। आरवी का मतलब समझते हुए शान के चेहरे पर पहले हैरानी के भाव उभर आए, फिर वो बेड से नीचे उतरकर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और सख्त निगाहों से उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मेरी नजरों में तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें मैं अपने करीब आने दूं।
अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ सोने के लिए क्यों कहा आपने और अंशु को साथ लाने से क्यों मना किया? टू बी कंटिन्यूड।